पृष्ठ संख्या 90। उर्दू काव्य का पंडित पंत की कविता को नहीं समझ सकता, वैसे ही हिंदी साहित्य इकबाल के काव्यों के रसास्वादन में असमर्थ है। क्या इन दोनों भाषाओं को भारत संघ की भाषा स्वीकार कर हम उसे हिमालय से कुमारी और कलकत्ता से अमृतसर तक के सारे लोगों के ऊपर लादना चाहते हैं? अपनी भाषाओं बंगला, तेलुगु, कन्नाड़ी, मलयालम, तमिल, मराठी के साथ साथ उर्दू, हिंदी दोनों भाषाओं और लिपियों को करोड़ों जनता को अनिवार्यतया पढ़ाना दुस्साध्य और श्रम तथा समय का अपव्यय है। हम संघ की एक लिपि और एक भाषा ही अपना सकते हैं जो कि अल्पतम समय में साम्य हो। हिंदी अर्थात नागरी एक ऐसी लिपि है जिसमें किसी को विवाद नहीं हो सकता। अरबी लिपि जिसमें कि उर्दू लिखी जाती है अपने बाहरी दोषों के कारण मुस्लिम मध्य एशिया और तुर्की से हटाई गई है, जिसको शुद्धता पूर्वक लिखने के लिए उत्तरी भारत के स्कूलों की 8 साल की शिक्षा भी पर्याप्त नहीं। उस लिपि को संघ की अनिवार्यता लिपि बनाना हठधर्मी के सिवा कुछ नहीं है। व्यवहार में वह चल नहीं सकती, संगीनों के बल पर उसे 35 करोड़ जनता पर थोपा नहीं जा सकता। अब भाषा को लीजिए, सारे भारत में प्रांतों में 90% जनता के लिए हिंदी का पढ़ना लिखना बहुत आसान है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 60-70% संस्कृत शब्द समान हैं। वे असमिया, बंगाल, गुजरात, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ी भाषियों के पहले से ही परिचित हैं। इसके विरुद्ध उर्दू के 60-70% अरबी, फारसी के शब्द उनके लिए बिल्कुल नए हैं। उर्दू का अपनाना बहुत महंगा सौदा है। डर है कि कहीं दोनों भाषाओं की अनिवार्य शिक्षा के ख्याल से हिंदी को संघ की भाषा मनवाना ही न खटाई में पड़ जाए। इस झगड़े से बचने के लिए अंग्रेजी को अपनाए रखने की बात 15 अगस्त से पहले भले ही कही जा सकती थी, लेकिन अब उसकी बात करना अरण्य रोदन से बढ़कर नहीं। दोनों लिपियों के झगड़े से बचने के लिए रोमन लिपि की बात चलानी फिजूल है। संसार में रोमन लिपि भी सार्वभौम नहीं। रूसी लिपि का भी 20 करोड़ से अधिक आदमी व्यवहार करते हैं। फिर हमारी नगरी लिपि उच्चारण संकेत में कोई दोष नहीं रखती, वह रोमन से भी अधिक साइंसगत है। कुछ मामूली सुधार से टाइप और प्रेस के लिए भी वह रोमन से अधिक उपयोगी बन सकती है। कुछ सज्जनों ने अपनी नीम हकीमी का पूर्ण परिचय देते ख घ घ ठ थ ध फ भ को वर्णमाला से निकाल उनका नाम क ग आदि पर चिन्ह लगाकर लेने का प्रस्ताव किया है। इन्हें इसमें क्या फायदा दिखता है समझ में नहीं आता। चिन्ह लगाकर अक्षर बनाने की आवश्यकता तब होती है जब उस उच्चारण के लिए कोई वर्ण न हो। संयुक्त अक्षरों की जगह हलंत अक्षर तथा मात्राओं को अ के ऊपर लगा स्वरों के टाइपों को हम करके दूसरे टाइपों के ऊपर लटकने वाली मात्राओं को संकुचित करके हम हिंदी लिपि को आधुनिक यंत्रों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिपि बना सकते हैं। अब भी वह छाया यंत्रों के लिए उपयुक्त है। हिंदी तो हिंदी की मोनोटाइप और लिनोटाइप का बहुव्यवहार ही बतला रहा है। कहा जाता है पृष्ठ संख्या 91, उर्दू भाषा और लिपि को यदि सारे भारत की भाषा और लिपि नहीं स्वीकारा गया, यानी 35 करोड़ नर नारियों को जबरदस्ती उर्दू पढ़ाया लिखाया नहीं गया, तो खंडित हिंदुस्तान फिर एक नहीं हो सकेगा। ऐसी एकता का स्वप्न कम से कम गांधीवादियों को तो छोड़ ही देना चाहिए। एकता तभी संभव है जब भारत पूर्णतया समाजवादी हो जाए। वैसा कहने वाले अपने हृदय को टटोल कर देखें कि भारत की पूर्ण समाजवादी बनाने के ख्याल के लिए उनके दिल में कितना स्थान है। समाजवाद कायम करने के लिए कटिबद्ध स्थायी साथियों से कहूंगा कि दो दो भाषाओं और लिपियों को दो प्रांतों अर्थात युक्त प्रांत और पूर्वी पंजाब से बाहर ले जाकर सारे भारत में फैलाना राष्ट्रीयता के क्षेत्र में सांप्रदायिकता की नींव को मजबूत करना है। सांप्रदायिकता को हमें भूलवाना है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी धर्म मानना वैयक्तिक बात है, इसे राष्ट्रीयता के क्षेत्र में दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि मुस्लिम सांप्रदायिकता को संतुष्ट करने के लिए आप उर्दू को अपनाने की जिद कर रहे हैं, तो ईसाइयों को रोमन लिपि ने भला क्या कसूर किया है जिसमें लाखों बाइबिल छापी और पढ़ी जा रही है। एक बार इस सिद्धांत को मान लेने पर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के भी उर्दू पक्षपाती वहां उर्दू को प्रांतीय भाषा मानने के लिए कहेंगे। फिर आप विरोध में कौन सा तर्क पेश करेंगे? हिंदी लिपि में लिखी संस्कृत निष्ठ हिंदी ही भारत संघ की एकमात्र भाषा हो और होकर रहेगी। अंग्रेजी पढ़कर नौकरी के पीछे दौड़ने वालों को इस पर नाक भौं नहीं सिकोड़ना चाहिए, न हाय तौबा मचाना चाहिए। भारत की फिर से एकता इन थोथी हर धर्मियों से नहीं होने की, शोषण के अंत और पूर्ण समाजवाद की स्थापना से ही होगी। हमें इसके लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। भारतीय संघ की भाषा पर विचार कर लेने के बाद फिर हिंदी भाषी चार प्रांतों, युक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार पूर्वी की प्रांतीय भाषा का सवाल आता है। मैं कह चुका हूँ कि अंग्रेजों के बनाए भानमती के कुनबे वाले अन्य प्रांतों की भांति इन चारों प्रांतों को भी मातृभाषाओं के अनुसार बांट देना चाहिए। लुधियाना, अमृतसर, फिरोजपुर के पंजाबी भाषा भाषी, भाग का हिंदी भाषा भाषी अम्बाला कमिश्नरी से गठबंधन करके एक प्रांत समय बनाए रखने का कोई मतलब नहीं। अगर हम अपनी सूझबूझ नहीं रखते और इन चारों प्रांतों को आज की सीमाओं के साथ कायम रखना चाहते हैं, तो भी बिहार और मध्य प्रांत में जहां उर्दू अब तक कचहरियों में घुस नहीं सकी, उसे अब घुसेड़ने का यत्न दुराग्रह मात्र है। युक्त प्रांत और पूर्वी पंजाब में भी उर्दू तभी सरकारी भाषा रह सकती है यदि वह अरबी नहीं नागरी लिपि में लिखा जाए। इसके लिए हिंदी लिपि द्वारा हमें उर्दू की शिक्षा काफी सुभिता करना पड़ेगा।